प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग तीन, लेक्चर नंबर 147। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ॐ श्रुतात्मने नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वच्छायाणम्, नमो लोये सौवसाऊणम्, सुरसुरनरपतिवन्द्यने प्रविनष्टघाति कर्मणे प्रणमन करु मो धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीरने वरिशेष तीर्थं करने सिद्ध शुद्धास्तित्वने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तप वीर्या चरण संयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने वंदुवणि हो मनुज क्षेत्रे वर्ततारहंतने अरहंतने सिद्धने नमस्करण करिये रीते गणधरने अध्यापकोने सर्वसाधुसमूहने तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करू साम्य निजे नाति शिव प्राप्ति बने। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी है तथा जयसेन आचार्य ने तात्पर्योक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से तीसरी पुस्तक हम पढ़ रहे हैं और पृष्ठ संख्या है 45। नीचे का जो पैराग्राफ है ना, बापू आ भगवान, वहां से हम पढ़ेंगे। देख बापू आ भगवान एम कहे छे के, पेज नंबर 45। वो लेके बैठना स्टैंड वगैरह। जेने मांस अने दारू नथी खादा पण जेने विषय कशायना परिणाम आड़ा स्वभाव थी अवड़ा छे एने बहु सेव्या होय एना फळमां मनुष्य उभा छे अने तिर्यंचाम आड़ा छे। गाय भेंस हिस्कोलिए बधा आड़ा आडोडाई मां जवाना, आडोडाई करिए आड़ा मां जवाना। आडोडाई एटले वो तो स्वभाव से आडोडाई हो गई ने उसके। यहां लिखा ना विषय कशायना परिणाम बहु सेव्या हो। अहीं कह्युं छे जो ने अत्यंत चंचल तरल अस्थिर वर्ततु थको। अभी 46 पर आए हम। हाँ, ए इंद्रिय ज्ञान बापा, इंद्रिय ज्ञान को कैसा कहा? चंचल, क्योंकि एक एक इंद्रिय के द्वारा वो उपयोग भटकता रहता है, चंचलता है, तरल है और अस्थिर है। आ लखू ने आ चोपड़ा लखवा ने आ लखवा ने आ लखवा आहा हा एवं अस्थिर वर्ततु थकू। अनंत शक्ति थी च्युत थयू हुआती। अति इंद्रिय ज्ञान तो अनंत शक्ति युक्त है, सामर्थ्य युक्त, और ये इंद्रिय ज्ञान में वो कुछ रही नहीं शक्ति, इसलिए उससे च्युत हुआ कहेंगे। सरवाड़ो पाछो आ लेवो छे, प्रभु अंदर मां अनंत शक्ति वालो आनंद छे। એને અંદર હૈ કી બાત હૈ, અંદર અનંત આનંદનો ગાંઠડો પ્રભુ છે. ઓર ઇન્દ્રિય જ્ઞાન કૈસા હૈ અભી વો દુઃખરૂપ પરિણતિ હૈ ભાઈ, તને ખબર નથી. આત્મામાં અતિન્દ્રિય આનંદ છલોછલ ભર્યો છે, અતિન્દ્રિય જ્ઞાન આત્મામાં છલોછલ ભર્યું છે. ક્યાં કહા? અતિન્દ્રિય આનંદ ભી છલોછલ ભરા હૈ ઓર અતિન્દ્રિય જ્ઞાન સે ભી આત્મા છલોછલ ભરા હુઆ હૈ. એવી અનંતી શક્તિથી ચ્યુત થયો છે, ખસી ગયું છે એને. અહીં નથી કહેતા મગજ ખસી ગયું છે, આને મગજ ખસી ગયું હતું એમ અહીં કહે છે. એ લૌકિકમાં ડાયા કહેવાય, પણ ખસી ગયું હોય એ ગાંડા કહેવાય. પણ ખરા ગાંડા આ છે. કોણ? એ અતિન્દ્રિય આનંદ સે ખસી ગયા હૈ, ઉસકે અપની સ્વ શક્તિ જો હૈ અનંત શક્તિ, ઉસસે ચૂપ કર. અબ યે તો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ઓર ઇન્દ્રિય જો માના હુઆ સુખ હૈ ઉસી મેં અટકા હુઆ હૈ. તો કહેતે અનંત શક્તિથી ચ્યુત થયું હોવાથી એ પાંચ ઇન્દ્રિય તરફના જ્ઞાનથી અજ્ઞાનથી મિથ્યાત્વથી ઢંકાઈ ગયો છે. એથી એનું ચંચળ અસ્થિર થયેલું જ્ઞાન અનંત શક્તિથી ચ્યુત થયું છે. એસા નહીં અનંત શક્તિ પહેલે પ્રકટ થી ઓર બાદ મેં ઉસસે, એસા નહીં હૈ. ઉસસે ઉને કભી પ્રાપ્ત હી નહીં કિયા, ઉસી કો કહેતે અનંત શક્તિથી ચ્યુત હુઆ. અનંત શક્તિનો ધણી અંદર બિરાજે છે. હા હા, પેજ નંબર 46 નયા પેરેગ્રાફ ક્યા કહેતે હૈ, તીસરી લાઈન. પ્રભુ અનંત શક્તિનો ધણી અંદર બિરાજે છે, જેમાં કેવળ જ્ઞાન, એક સમયની કેવળ શક્તિ, ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણે. એક સમય કી જો પર્યાય જ્ઞાન કી પર્યાય હૈ, ઉસમે ઇતની શક્તિ કે ઇતના સબ જાણે, એવી એક સમયની કેવળ જ્ઞાન શક્તિ, એવી અનંતી કેવળ જ્ઞાનની શક્તિ આ જ્ઞાન ગુણમાં પડી છે. ક્યુંકી સાદી અનંત કાલ તક વો હર સમય એસે કેવળ જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાન હોતા રહેગા. સમજાનું કાંઈ? ભગવાન કેવળ જ્ઞાનમાં એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જોવે, એક સમયની પર્યાયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક જણાય, એવી કેવળ જ્ઞાનની અનંતી પર્યાય. એક સમય, બીજે સમય, ત્રીજે સમય એવી અનંતી, એ અનંતી કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયનો પિંડ એ જ્ઞાન ગુણ. એવા એવા અનંત ગુણનો ધણી શક્તિવાન પ્રભુ છે. એ જ્ઞાન ગુણ કી યહાં બાત બતાઈ, એસી બેહદ અમર્યાદ શક્તિવાલા એસે એક એક કરકે અનંત ગુણ એ શક્તિવાનથી ચ્યુત થઈ ગયો છે. તમારે ત્યાંના કરતા બીજી જાત છે. હા હા, શ્રોતા કહેતે અમારી દેખાય એવી જાત છે. ગુરુદેવશ્રી કાંઈ ધૂળે નથી ને. આહા હા, અહીં કહે છે અનંત શક્તિથી ચ્યુત થયું હોવાથી ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ઇન્દ્રિયના સુખનું સાધન એટલે દુઃખનું સાધન છે. ક્યાં કહેતે? ઇન્દ્રિય સુખ તો હૈ નહીં, માના હુઆ હૈ વો તો હૈ તો દુઃખ. ઓર કહેતે ઉસકા સાધન ક્યા હૈ તો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન. એને વો સચ દેખા જાય તો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન એ દુઃખ કા સાધન હૈ. એ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન અનંત શક્તિનો ધણી પ્રભુ એમાંથી ચ્યુત થઈ ગયું છે, ભ્રષ્ટ થઈ ગયું છે. સમજાનું કાંઈ? અત્યંત વિકલવ વર્તતું થકું. વિકલવ એટલે અત્યંત ખિન્ન, દુઃખી, ગભરાયેલું. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન અતિ ખિન્ન, દુઃખી, ગભરાયેલું જ્ઞાન છે. ઓહો, આ ભગવાનની વાણી છે. સંતો આડતિયા થઈને જગતને જાહેર કરે છે, પ્રભુ શું કર્યું તે? અનંત ગુણનો ધણી પ્રભુ, અતિન્દ્રિય આનંદનો નાથ, એને ભૂલી જઈ અને આ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન અને ઇન્દ્રિય સુખમાં તે સર્વસ્વ માન્યું. વહી સબ કુછ હૈ એસા માન લ્યા. સર્વસ્વ, તું ભ્રષ્ટ થયો છો. ક્યા કહેતે? જ્યાં અનંત અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ઓર આનંદ કા એસા ભંડાર હૈ, ઉસકો તો સમજા હિ નહીં, જાના હિ નહીં, ઉસકા કુછ ભાન હિ નહીં હૈ. ઓર કહેતે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ઓર ઇન્દ્રિય સુખ મેં સબ કુછ માન લ્યા ઉસને. सुख तो आत्मा में छे एने ठिकाने इंद्रिय सुख में सुख मायनो। इंद्रिय सुख किसको कहेंगे? इंद्रियों में तो सुख नहीं है, इंद्रियों के द्वारा जो विषय जानने में आते हैं वो तो कल्पना है कि इसमें सुख हूँ, वो तो राग है ना उसका, वो भोगने का राग है, इच्छा है, एक्चुअली इच्छा हो रही है, वो पीड़ा है, वो दुख है और वो दुख का इलाज करना चाहता है किससे? हाँ वो तो इंद्रियों के विषय को मैं भोगता हूँ ऐसा मानकर, इसलिए कहते हैं इंद्रिय ना ज्ञान करीने सुख मान्यू। साधन कीधु छे ने एने आवू सांभळवू कठण पड़े, मार्ग आवो छे भाई, दुनिया गमे ते रीते आत्मा ने राजी करे पण ए दुखी छे। अभी दिवाली में लगता था क्या इतना मिठाई खाते हुए मैं दुखी हो रहा हूँ? हाँ वो बनाते समय जरूर दुखी लगा होगा, कितने इतने मेहनत हो रही है, खाते समय कैसा लगता था? सुखी सुखी है ना। विकलव वर्त तू थको, विकलव एटले खिन्न दुखी घबरायेलू, अरे आटलू जानवामा नथी आवतू, अरे आटलू जानवामा नथी आवतू, क्या कहते है? जितना जाना ने उससे अधिक जानने की इच्छा तो है और कम जान रहा है। तो कहते दिकरा दिकरी ने प्रणामवा हो तो घबराए के अपना मोभा प्रमाणे कन्या मळे तो आपनू ठीक रहेशे, नहीं तो स्टेटस स्टेटस मोभा। अभी उस जमाने में तो इतने स्टेटस की चिंता करते थे, अभी तो कोई कन्या लावे तो रहे की नहीं, नहीं तो अभी तो क्या है, सास ससुरा को जेल में डाल दे उल्टा पुल्टा कोई भी कंप्लेन करके, देखे थे नहीं तो ठीक नहीं कहवाए। अने अपनी कन्या पन कहीं ठीक माँ जाए तो अपनो मोबो सरखो कहवाए, हा हा ए घबरायेलू ज्ञान छे एम कहे छे, दुखी छे हा हा अपना मभा प्रमाणे, ये मोभा कहा या मभा कहा, घर नो मभो होय एना प्रमाण मा जोई ने बधु। हाँ मोभो शब्द है ना, तो शायद बोलते समय मभा कहा होगा। आलो खाचर हतो ने, आलो खाचर जसदन दरबार वींचिया नाम, आलो खाचर जसदन दरबार वींचिया, हाँ वींचा तो गांव का नाम है। ए एवा ने कन्या आप तो के बकरा ने चार तो होय, एवा ने बोलावे, ए होय काठी एने बोलावी ने कन्या आपे अने एक गाम आपे। ए बाई जीवे त्यां सुधी रहे पण बाई मरी जाए पछी ए गाम लई ले। आ जसदन मोढ़ू का छे ने, जोया छे ने बधा जोया छे, ए आवतो एनो जमाई अमारी पासे आवतो एम कहे के जो आ होय तो बाई ने बार नु अनुकूल सुख मळे, ए घबरायेलू छे अमारी पासे एनो जमाई आवतो। आहा हा श्रोता कहते इंद्र तो भगवान ने हजार आंख करीने जोवे छे, वो इंद्रिय ज्ञान की बात हो रही नहीं, इसे हजार आंख करके समाधान, ए तो समकीति छे, ए तो अंदर सम्यक दर्शन अति इंद्रिय ज्ञान नो धनी छे, पछी इंद्रिय तो एनो व्यवहार छे, भगवान नु रूप एवं होय छे, आत्मा तो एनो अनंत अनंत केवल ज्ञान पामशे एवी पात्रता छे, माताना पेट मा आवे त्यारथी ए तो त्रण ज्ञान नो धनी छे, पण एना एने तीर्थंकर बालक की तीर्थंकर बालक तीर्थंकर की बात हो रही है, पण एना शरीर नी एवी सुंदरता होय छे के इंद्र हजार आंख करीने जोवे तो पण तृप्ति न थाय। ऐसे वो तो शरीर की रचना, ऐसे सुंदर शरीर होता है उसका बालक तीर्थंकर का। हाँ वो तो इंद्र की बात, मैं तो बालक की बात करती हूँ। पण छे इंद्र समकीति एकावतारी छे, एकावतारी ने अभी वहां से अभी सौधर्म इंद्र है, अब यहाँ मनुष्य होकर मोक्ष जवाना छे, एने ए जातनो प्रेम राग आवे छे एटले भक्ति करे छे, ऐसी भगवान की, अभी वो भगवान होने वाला जीव है तो उसके प्रति भी ऐसा परिणाम होगा। शक्रेंद्र छे। शक्रेंद्र ने सौधर्म इंद्र को शक्रेंद्र कहते हैं। शक्रेंद्र सुधर्म देवलोक छे ने, 32 लाख विमान छे, एक एक विमान में असंख्य देव छे, ऊपर 32 लाख विमान छे, एनो ए साहिबो छे, जैसे सौधर्म और ईशान, ईशान सौ जो इंद्र है उसके कितने लाख विमान का स्वामी है वो, 28 लाख और ये 32 लाख। ये दक्षिण का जो पहला नाम लेते वो दक्षिण के इंद्र है, सारे ही दक्षिण इंद्र है वो एकावतारी होते हैं, सारे ही दक्षिण इंद्र, उत्तर के नहीं जा सकते वो बात नहीं है, नियम रूप है, नियम रूप है। और इसके चारों लोकपाल भी सारे एक बहुतारी है और उनकी शची, हाँ हाँ सौधर्म इंद्र के 4 लोकपाल और उनकी 8 पट्ट देवियां होती, उसमें से एक शची नाम की जो है वो भी, हाँ क्योंकि वहां अभी समय दर्शन स्त्री में जन्मी है तो जन्म से मिथ्या दृष्टि थी, वहां जाके समय दर्शन प्राप्त किया है, अब यहाँ मनुष्य होकर वो भी मोक्ष जाने वाली, ये नियम है। एक भवावतारी, ऐसे बहुत सारे नियम है, लोकांतिक सारे ही वो एक भवतारी होते, वो तो सर्वासिद्धि वाले 33 सागर की आयु वाले वो भी ऐसा ही है। एक भवे मोक्ष जवाना छे, त्यांथी मनुष्य थईने मोक्ष जवानो छे, अने एक पत्नी छे स्त्री, करोड़ों इंद्राणियों छे, एमा एक इंद्राणी पटराणी एवी छे के, क्योंकि उनके तो 8 पट्ट, हम यहाँ पट्ट रानी कहते वहां पट्ट देवी कहते, 8-8 होती है, मुख्य जो होती है वो 8 होती है, उसमें से ये शची नाम की जो है वो नियम से मुख जाएगी नेक्स्ट भाव में। पटरानी एवी छे के ए पण एकाव पट्ट पट्टे ने वो उनके पट्ट पर पट्ट होता है ना, वो तो पट्टाधीश ऐसा कहते वो पट्ट उनका, हाँ हाँ मुख्य रानी, मुख्य पटरानी यानी मुख्य रानी। देखो उपजी त्यारे मिथ्यात्व महती, बाई स्त्री खरी ने, स्त्री पने उपजे बदा मिथ्या दृष्टि होए, स्त्री पर्याय में उत्पन्न होने के समय वो मिथ्या दृष्टि होते, हाँ वहां उत्पन्न होने के पश्चात समय दर्शन प्राप्त कर सकते। मनुष्य और स्त्री में जो स्त्रियां है वो 5वें गुणस्थान तक जा सकती है और देवी है वो तो 4th गुणस्थान प्राप्त करेगी, उसमें तो ऊपर के गुणस्थान ही नहीं होते देवों में। तो स्त्रीपणे उपजे बधा मिथ्या दृष्टि होय, समझाय छे काई? देवलोक में स्त्रीपणे उपजी त्यारे मिथ्या दृष्टि हती, पण पछी इंद्रनी साथे समोसरण में भगवान पासे जाता एमाथी संकित पामी, अने एवी छे के ए पण मनुष्य थईने मोक्ष जवानी। पति पत्नी बे छे, सुधर्म देवलोक, अभी सुधर्म सौधर्म इंद्र की आयु तो 2 सागर से भी ज्यादा होगी, हम कहेंगे ना सर 2.5 सागर कहेंगे, साधिक 2 सागर कहेंगे, और इनकी आयु मैक्सिमम यहाँ 55 नहीं हो सकते, 55 पल्ले वाले ऊपर जाएंगे, यहाँ 5 पल्ले उनकी आयु होगी, 5 पल्ले। अब कहते 10 कोड़ाकोड़ी पल्लों का तो 1 सागर होता है और उनकी आयु 20 कोड़ाकोड़ी पल्लों की, और ये 5 पल्ले में एक शची मरकर चली जाएगी, मोक्ष ले जाएगी, क्योंकि मनुष्य में कितने करोड़ पूर्व की मैक्सिमम हो सकती है आयु, वधारे में वधारे, तो ये कितने ही देवी आकर चली जाएगी, मोक्ष भी चली जाएगी, और यहाँ वो सौधर्म इंदिरा भी वहां पर विराजमान है।
समझ लेते हम, 1 नंबर की सची इंद्राणी जो है, हाँ वो मनुष्य में आके मोक्ष चली गई,
हाँ 1 नंबर की,
तो वहाँ जो 8 थी उसमें 7 रही,
पर वो सारी शची नहीं है,
तो अभी नेक्स्ट जो आएगी
वो शची होगी,
नेक्स्ट जो होगी
वो शची आएगी, वहाँ
दूसरी से कोई नहीं,
7 में से नहीं, वो 7 में से जावे तो जावे, उसका नियम नहीं है,
नहीं, 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 नहीं।
वो शची नाम की वहाँ जो होती है उसकी बात,
पट्ट देवी होगी क्या नहीं,
अन्य पट्टे देवियाँ होती है, 8 होती है टोटल, उसमें से
मेरा ये पूछना है 8 की ओरिजिनल,
हाँ
उसमें से एक शची इंद्राणी निकल गई,
निकल गई
यानी मोक्ष चले गए,
हाँ
तो उसकी जगह तो कोई लेगा कि नहीं लेगा,
दूसरी जन्मेगी ना,
दूसरी को लेके,
दूसरी जन्मेगी, वो 7 में से नहीं आएगी कोई, क्योंकि वहाँ जन्मते अंतर्मुहूर्त में युवान हो जाती है, वहाँ नहीं जन्मेगी वहाँ पर कोई,
यानी जो सात लाइन में खड़ी थी वो आगे नहीं बढ़ेगी,
वो सब उसी पोजीशन पर थी, पट्ट देवियाँ ही थी सब, खाली अकेली एक शची पट्ट देवी नहीं थे, क्योंकि वो सारे के आठ सिंहासन पर बैठती है वहाँ पर उनके सामने, पर उनमें से हम तो एक ही मुख्य, दूसरी जन्म लेगी वहाँ वो शची रूप से।
आपका कहना है सीनियोरिटी काम में नहीं आएगी?
सीनियोरिटी नहीं, वो सब एक सेम एक जैसे थी। हाँ किस, हाँ छठा ने, हाँ तीसरे में कुलकर नहीं होगे, अवसर्पिणी में तीसरे होंगे और उत्सर्पिणी में पांचवे में होंगे, वो तीर्थंकर होने के हजार साल पहले वो कुलकरों का जन्म, वो कुलकर छोटे आयु वाले होंगे। हमने अवसर्पिणी की बात की थी, ना उल्टा, छठा पांचवा और छठा पांच चौथे में फिर मोक्ष जाएंगे। कुलकर भोग, देखो फिर से सुनो, कर्म भूमि शुरू होने वाली थी ना, उसके पहले कुलकर आए, क्योंकि कुछ भौगोलिक चेंजेस हुए। अब यहाँ के कुलकर क्या करेंगे, पांचवे काल में जन्मे वाले, अभी यहाँ पर जो कोई बात हो रही है, अभी पांचवा काल चल रहा है और अभी यहाँ डिटोरिएशन चल रहा है, कौटुंबिक पद्धति जैसे छुटा छेड़ा लेना है ये वो चल रहा है, अभी उसके आगे अभी तो शुरू हो ही गया है। कौन सा, वो साथ साथ रहना शादी बिना किए, ये बात अभी और बढ़ने वाली है, कुटुंब पद्धति पूरी नष्ट होने वाली है। ऐसे ही जब छठे से पांचवा काल आएगा तो यही पद्धति होगी ना वहां पर, अब उसके लिए कोई कौटुंबिक व्यवस्था वगैरह ये ऐसी बातें वो सिखाएंगे। अभी वहां एग्जैक्टली क्या होगा उसकी अधिक चर्चा नहीं है शास्त्र में। हाँ नहीं, ये कुलकर क्या करेंगे पांचवे काल वाले, वो ज्यादा उसकी चर्चा नहीं है, इतना है कि हजार साल पहले से यानी तीर्थंकर होंगे, उनके पूर्व में कुलकर होंगे।
जो अवसर्पणी काल,
उत्सर्पिणी,
सुनिए सुनिए, अवसर्पणी काल में पहला कुलकर क्या बताए, दूसरा कुलकर क्या करे, ऐसे जो,
हाँ ऐसा वहाँ नहीं है,
हो सकेगा ना वैसे?
नहीं नहीं, पर वहाँ वही पांचवा काल ऑलरेडी था।
कहाँ पर पांचवा था? हाँ
पांचवा, जैसे हमारा पांचवा काल चल रहा है,
हाँ।
वैसे चढ़ते हुए,
हाँ।
छठे के बाद पांचवा काल है,
बाद में चौथा आएगा,
चौथा आएगा उसके तो, पहले कुलकर होंगे।
हाँ तो वो भी कुलकर जो पहले होंगे उसमें भी चौदह होंगे ना?
हाँ होंगे, हजार साल में चौदह होंगे,
चौदह
हाँ।
कुलकर तो यहाँ पर जो पहले कुलकर ने जो काम किया
वो नहीं करेंगे,
वो चौदहवा करेगा उधर का,
नहीं करेगा क्योंकि चौथा काल आने वाला है, भोग भूमि तो चौथे के बाद में आने वाली है, भोग भूमि संबंधी कुछ ये नहीं करना है उनको, वो तो जैसे अभी है वैसे ही, केवल वहाँ पहले मुनि नहीं होते होंगे, कैसे धर्म का स्वरूप नहीं होता होगा, उस संबंधी कुछ बातें जैसे पूर्व भोग के संस्कार लेके कोई जीव जन्मेंगे वो कुछ उपदेश देंगे यहाँ लोग जीवों को, अभी क्या होगा उसकी चर्चा अधिक नहीं आती शास्त्र में, अभी त्रिलोक सर फिर जाके देखना पड़ेगा, वो तो खाली अवसर्पिणी की बात है, वो अवसर्पिणी अभी हमारा अवसर्पिणी चले ना उनकी मुख्यता से वो बात बताई, उत्सर्पिणी के कुलकर क्या क्या सिखाएंगे, कब होगे, उनकी आयु कितनी होगी, इसकी इतनी चर्चा उसमें नहीं आई हुई है, अब शायद वो सिद्धांत कोश में कहीं मिलेगी तो। हाँ अभी आगे बढ़ेंगे,
उस समय
अंतिम अंतिम में हो सकते हैं, नहीं 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 वो तो पहले तो भोग भूमि में चौथे गुणस्थान तक थे ना, उल्टा अभी उल्टा पता नहीं कैसे, क्योंकि कोई पूर्व भोग के संस्कार लेके आएंगे स्वयं दीक्षित होगे कैसे होगे, क्योंकि उनको दीक्षा देने वाला ही कोई मुनि तो होने चाहिए, परंतु स्वयं भी दीक्षित होगे ना, अभी वही बात इतनी क्लियर नहीं है, उसके लिए शास्त्र का आधार है वही हम बोल सकते हैं, अपने मन से तो नहीं बोलेंगे ना, वही पूर्व के संस्कार का ही अर्थ है, हाँ कि जैसे भी स्वामी जी आए, उनको तो पूर्व भव के वो पूरी देशना मिली थी, तीर्थंकर की वाणी सुनकर आए थे, तो यहाँ आकर समयसार पढ़कर भी उनकी कुछ बातें हुई। वैसे वहां पर भी जन्मने वाले जीव होंगे कि नहीं होंगे? ऐसे हर काल में होंगे, क्योंकि पूर्व के कोई संस्कार उनके द्वारा उपदेश भी मिलेगा, यानी वहां पर भी कोई देशना वगैरह बात होगी वहां पर, यानी वहां जन्मने के बाद सम्य दर्शन प्राप्त जैसे तीरंज कर सकते हैं, नारकी कर सकते हैं, तो वहां पांचवे काल के मनुष्य भी तो करेंगे कि नहीं करेंगे? यही इसीलिए वो खुलकर कुछ उपदेश देते होंगे, तो यही तो मेरा कहना है, क्योंकि हम उस पर अपना अनुमान लगा सकते हैं, परंतु हमें आगम से चलना है। आगम में जो बात बताई है उसी को हमको स्वीकार करके चलना है। हाँ देखो यहाँ क्या कहते हैं, नीचे से चौथी लाइन,
हमारे अरविंद भाई रात को आहार की बात है।
देवलोक मां स्त्रीपणे उपजी सारे मिथ्या दृष्टि हती। देखो किसी भी स्त्री पर्याय का जीव जन्म से समय दृष्टि नहीं हो सकता, ये नक्की। अभी जो देवी देवताओं को पूछते हैं ना, देवियों को, वो तो ये तो जिन शासन की देवी है, उनके रक्षक है, ऐसा ऐसे उसकी पूजा करने लग जाते हैं, पर वो चौथे गुण स्थान तक वो जन्मी तारे मिथ्या दृष्टि थी कि नहीं? ये जो हमें 24 तीर्थंकरों की जो शास्त्र में उनके नाम भी प्रसिद्ध है, यक्ष यक्षिणी कहो, तो जैसे पद्मावती है या अन्य भी जो कोई देवियां हैं, तो जन्म से तो मिथ्या दृष्टि थी, और जन्म के बाद उन्होंने समय दर्शन प्राप्त किया हुआ। जैसे हम भगवान के भक्त है, वो भी भगवान के भक्त है, और चौथे गुणस्थान वालों की पूजा नहीं की जाती। ख्याल में थे ये दोष क्या है वहाँ? ये चरणान योग के कुछ नियम होते हैं, पूजा तो हम भगवान की करेंगे, मुनियों की करेंगे।
हमारे कुल देवता हुई तो
कुलदेव कहाँ से हुई? वो तो बाद में सब अन्य मतियों में उनकी देवियां होती है, तो चलो हमारी भी देवियां हैं, इस तरह से बात शुरू हो जाती है, और हम वो देवी को तो भगवान से तीर्थंकरों से बड़ा मानते हैं। क्या कहे, क्योंकि अभी क्या पता, हमने ये कोई नाम भी नहीं सुने कभी। हाँ ये सब मिथ्यात्व का पोषण है। हाँ चलो चलो, हाँ चलो, अभी उसकी चर्चा करने से क्या है, हमें क्या क्या माना, किसने क्या क्या माना है। पर स्त्री पर्याय का जीव जन्म से मिथ्या दृष्टि होता है। हाँ ये मनुष्य में कोई स्त्री में जन्मा है, हाँ तो समय दर्शन क्या, तो यानी वो कहाँ तक, आरिका तक हो सकता है, पांचवे गुणस्थान तक प्राप्त कर सकता है, इतनी लिमिट है द्रव्य से स्त्री होते हुए। हाँ जो द्रव्य से पुरुष है और भाव से जो स्त्री है वेदी है, वो तो मोक्ष जा सकते हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं। देखो अभी आगे बढ़ेंगे, अष्ट द्रव्य से पूजा नमन, यानी कैसा नमन, जैसे आप अपने माँ बाप को भी नमन करते हो, गुरुदेव अपने गुरुदेव को हम नमस्कार करते थे, हम स्कूल के टीचर को नमस्कार करते हैं, वो बात अलग है। जैसे आप है दूसरे साधर में आते तो आप जय जिनेन्द्र करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ तो उसमें क्या है,
नहीं उनको देवी समझकर अगर,
पर उनको अर्घ्य देना, उनको भगवान के बाजू में स्थापन करके उनकी विनय पूजा, उनकी भगवान के सामने उनकी जय जयकार करने लग जाते हैं। आप कहेंगे भगवान के सामने नहीं करेंगे, हम घर में करेंगे, क्यों करेंगे? उनसे आपको क्या मिला? ये कोई पीछे भय आशा कुछ पड़ी है, ये हमारा भला करेंगे, क्योंकि उनमें उनसे तो कोई उपदेश मिला नहीं आपको, और भी कोई बातें उनसे तो मोक्ष मार्ग संबंधी मिली नहीं है, तो उनकी ये मोक्ष मार्ग में उनके पूजा करने का क्या क्या जरूरी क्या है उसकी? और ऐसे तो ऑर्डर है कि चौथे गुणस्थान वाले की पूजन नहीं, पांचवे वाले को भी अर्घ्य नहीं दे सकते।
नहीं पर हम नमस्कार नहीं करेंगे तो समाज में हमारा नाम खराब होता है।
वही तो ना, इसी डर से चलता है सब। हम नहीं करेंगे तो समाज क्या कहेगी, हमको अलग से रखेगी,
यानी भय आशा स्नेह
हाँ वो सब आ गए।
लोभ से जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को पूछता है वो निगोदगामी है, ऐसा लिखा है पंडित टोडरमल जी ने। और वो भी
अभी श्रावकों के लिए भी पूजनीय नहीं है अभी,
उससे कोई उपदेश न सुने, बाकी हमारे से जो बड़े हैं जैसे आपने बोला गुरु है,
किसमें बड़े वो
उम्र में बड़े,
हाँ तो आप वो मोक्ष मार्ग का नमस्कार कर रहे हो,
उसका कोई उपदेश सुनने की बात ही नहीं
है, तो लौकिक की बात नहीं चल रही यहाँ पर। तो लौकिक में आप कहेंगे लौकिक सज्जनता है तो हम सभी को वंदन करो, फिर आप
गाय को भी वंदन करो फिर,
नहीं
क्यों,
क्यों नहीं, वो ना बड़ी है ना आपसे उम्र में देह से बड़ी है इसलिए उम्र से।
अरे देखो कल परसों हमने देखा था टीवी पे एक घोड़े की कीमत 50 लाख, वो उधर बताया था कुछ, तो आपने कीमत 50 लाख के 50 रुपया भी नहीं होगी, कोई नहीं खरीदेगा अपने को।
देखो बात छोड़ दो, यहाँ तो देव गुरु शास्त्र का निर्णय करके वही जो हाँ पूजनीय जिसको कहेंगे हम,
नहीं आपने वो कक्षा में डाला नहीं, क्योंकि गुणस्थान को भी पूजन नहीं करते
हाँ।
तो चौथे गुणस्थान को भी हम जैसे मिथ्या दृष्टि को जैसे हाथ जोड़ते वैसा ही हाथ जोड़ना हुआ,
वो बात नहीं है
पूजा करने की बात नहीं, पूजा यानी
देखो पूजा ने अष्ट द्रव्य से पूजन को पूजनीय कहते हैं,
वो तो सवाल
है। देखो देवलोक में स्त्रीपणे उपजी त्यारे मिथ्या दृष्टि हती, पण पछी इंद्रनी साथे समोसरण में भगवान पासे जाता एमाथी समकित पामी, અને એવી છે કે એ પણ મનુષ્ય થઈને મોક્ષ જવાની, પતિ પત્ની બે છે સુધર્મ દેવ લે, હા સમજાણું કાંઈ, ભગવાન પાસે આવતા પણ એને બધું ભાન હતું કે આ વિકલ્પ છે, દુઃખ છે, રાગ છે, ભક્તિનો રાગ આવે છે એ પણ રાગ છે, અને આ જરી વિષયની વાસના ઉઠે છે એ પાપ અને ઝેર છે, હા હા, ઇન્દ્રિયમાં સુખ છે એમ બિલકુલ માનતા નહોતા, વાસના ઉત્પન્ન થાય તો ઝેર જેવી લાગે, આહા હા, એવો દેવ અને એની દેવી એક ભવે મોક્ષ જનારા છે, એ ભગવાનને 1000 આંખથી જોવે છે, છતાં એને સમકિત છે તો અતિન્દ્રિય જ્ઞાન છે, એને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન હૈ ઉનકે, અતિન્દ્રિય જ્ઞાન સાથે સંબંધ છે, યહાં અજ્ઞાની કી વાત હો રહી ને, વો તો ઉસકી તો અતા પતા હી નહીં અતિન્દ્રિય જ્ઞાન કી ક્યા બાત હૈ, અહીં અજ્ઞાનીએ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન સાથે સંબંધ તોડી નાખ્યો છે, અડતાલીસ પૃષ્ઠ નયા પેરેગ્રાફ હે ને, અજ્ઞાનીએ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન સાથે સંબંધ તોડી નાખ્યો છે, અજ્ઞાનીએ તો ઉસને સંબંધ ક્યાં હી નહીં, કભી માના હી નહીં, હા ઇન્દ્રિય જ્ઞાનમાં અતિન્દ્રિય જ્ઞાન સ્વરૂપ ભગવાન છે એનો સંબંધ તોડી નાખ્યો છે, હા હા ચ્યુત થયું ને, અનંત શક્તિથી ચ્યુત થયું હોવાથી અત્યંત વિકલવ વર્તતું થકું, વિકલવ કરતે ક્યાં કહા હતા, હા ખિન્ન દુઃખી વર્તતું થકું, પણ એને ક્યાં દુઃખ લાગે છે, લાગે ક્યાંથી, ક્યાં કહા, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ઓર ઇન્દ્રિય સુખ મેં ઉસમાં તો સુખ હી માન કર ચલ રહા હૈ और उसी में मजा मजा हो रहा है, उसको लग रहा है तो उसको तो दुख नहीं लगता, नहीं तो आप दुख कहते हैं, हम तो सुखी छे, और वो कहता है कोई उपदेश देगा, अरे हम कहाँ दुखी है, दुखी तो वो लोग है उनको जाके उपदेश दे दो, वो मिला था ना हमें कहाँ फिनिक्स में, ऐसा ही है ना, हम फिनिक्स गए थे पहली बार तो सभा में एक जन खड़ा हो गया, आप बार बार दुखी 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 कह रहे, हम कहाँ दुखी है, चाहे जब खाते पीते जो चाहे वो खाते जब चाहे वो पीते खाते पीते हैं, अब वहाँ वो कोई बहुत बड़ा तूफान आया था, वो कैटरीना नाम का कुछ था, तो वहाँ जाओ वहाँ लोग बेघर हो गए हैं और ये सब ऐसे शिविरों में रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, उनको तो ना घर है ना खाने पीने की, उनको जाके वो दुखी है, उनको समझाओ, हमें क्यों आप बार बार दुखी कह रहे, ये उनका प्रश्न था।
उत्तर क्या
उत्तर तो आपने दिया ना, बोलो।
हमने कहा आपको इच्छा होती है ना खाना खाने की या सोने की, जो भी है इच्छा तो होती है ना, तो इच्छा दुख है और आप समझते नहीं कि इच्छा इटसेल्फ दुख है करके, तो फिर मोक्ष की इच्छा करना क्या नहीं करना। हमने कहा इच्छा करने से कुछ नहीं होता है, जब
यानी जब तक मोक्ष की भी इच्छा है तब तक वो दुखी है ना, उतना भले सम्य सम्य दृष्टि को ऐसी इच्छा नहीं है जैसे मिथ्या दृष्टि इच्छा करेगा मुझे मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, ऐसा तो नहीं। हाँ वो तो उसके उसका वो साध्य है, प्राप्त करने योग्य ऐसा उसने माना भी है उसको, परंतु ऐसा अज्ञानी जैसे इच्छा नहीं करते बैठता है और वो इच्छा से प्राप्त होगा ऐसी उसकी मान्यता भी नहीं है।
एक अपेक्षा से बात ऐसी भी हो सकती है कि जैसे मान लो आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, वो करोड़ों की संपत्ति अच्छे काम में लाए, जैसे कोई मंदिर बनाए, शास्त्र मतलब शास्त्र
आवाज
शास्त्र बनावे, ऐसी कोई बात आती है तो आपका पैसा अच्छी तरह से यूटिलाइज होता है। अगर आपके पास करोड़ों की संपत्ति और सप्त व्यसनों में आपने उसको गंवा दिया तो कैसा, वैसे ये इच्छा है वो अच्छे काम के लिए करो तो शायद उसका फल भी मिल सकता है, ये भी समझाए उसको। एक्चुअली क्या था, छोटे बच्चों का क्लास था और वो उसका कोई माँ बाप आके बैठा होगा तो उसने चालू किया था।
हाँ चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम 48 पेज पर दुखी वर्ता तो थको है ना, एने क्या दुख लागे छे, चौथी लाइन लागे क्या थी, आत्मानो आनंद जोयो हो तो इन्हीं साथे मेळवे तो लागे ने, ये सच्चे सुख के साथ कंपैरिजन होगी तो उसको समझेगा ये कि दुख रूप भाव है। इंद्रियों में दुख लागे छे क्या एने, ये तो दुख छे, इंद्रियों ना विषयो छे ते दुख छे, झेर छे झेर ना प्याला छे। अब जो अज्ञानी है उसको सुख मानकर चल रहे उसकी बातें, उसको तो दुख अगर झेर का प्याला कहेंगे ये तू भूल कर रहा है कहेंगे तो उसको गुस्सा आएगा है ना। ए आम कहे छे जो अत्यंत विकलव वर्ततु थपु, महामोहमल्ल जीवतो हुआ थी, महामोहमल्ल ने मिथ्या तो एमा सुख छे एवी मिथ्या दृष्टि महामोह छे, ए इंद्रिय ज्ञान ने इंद्रिय सुख छे ते सुख छे, ए मने ज्ञान छे ए महामोह छे, एने महामिथ्यात्व है। भरत चक्रवर्ती हता, ऋषभदेव भगवान ना पुत्र चक्रवर्ती हता, भगवान के पुत्र नहीं वो तो, भगवान उनको तो कहते हैं कि उनको तो राजा जब थे वहां की बात है, वो कहने की पद्धति है। देव तरफ थी मोटा 5 महल बनावे, जबरा महल चक्रवर्ती ने होए बीजा ने होए नहीं, एक एक अब्जो रुपया की कीमत नो, सवार मा उठी ने एक बार आम सूर्य सामे नजर करे, आंख नो विषय केटलो छे ए बतावू छे, क्योंकि हमने चक्षु इंद्रिय का विषय में वो चक्रवर्ती जो सूर्य विमान जो हाँ उदयाचल पर आता है तब उसकी बात है, वो उसको मैक्सिमम उसको चक्षु इंद्रिय का विषय बताते, इतने दूरी से जानते हैं। हाँ दूर दूर का भरत चक्रवर्ती ए भवे मोक्ष जनारा, ए देह छूटी ने मोक्ष जवाना छे, मोक्ष गया पण जारे गृहस्थाश्रम मां हता तारे एक वार सूर्य नी सामे एटली ऊंचे थी नजर गई के सूर्यमा जिननु मंदिर छे, सूर्यमा शाश्वत मूर्तिनु मंदिर छे, क्योंकि वो ज्योतिष विमान है तो हर एक ज्योतिष विमान में शाश्वत अकृत्रिम चैत्यालय हो गए ये कह रहे। आ देखा है तो पथरा छे पण एमां शाश्वत मूर्ति छे एना दर्शन कर्या, आंखनी आटली शक्ति छता ए आंखनू ज्ञान ढंकायेलू छे ए पण जाने छे, ढंकायेलू छे ने वो इंद्रिय ज्ञान है वो अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है। हाँ, चक्रवर्ती थे, सम्य दृष्टि थे, उनके अतीन्द्रिय ज्ञान क्या है उसका अनुभव भी था, पर उनकी चक्षु इंद्रिय की इतनी रेंज थी वो बताना था। वो सारा त्रिलोक सार में उसका हिसाब पूरा कैलकुलेशन करके बताते हैं ना कि पंचेंद्रिय जो संगी पंचेंद्रिय जो कि चक्षु इंद्रिय की मर्यादा कहाँ तक की है, तो वो बात बताई जाती है। उनका प्रश्न ये था कि सभी चक्रवर्तियों की इतनी कैपेसिटी चक्षु इंद्रिय की होती है। हाँ, क्योंकि वो अयोध्या में यहाँ खड़े हैं और वहाँ वो निषद पर्वत के ऊपर सूर्य आया है, तो ये इसी कैलकुलेशन करते हैं सब पूरी। उदयाचल्य ने वो तो वहां से वो जब आया वहां पर, यानी दृष्टिगोचर हो सकता है चक्रवर्ती को अर्लीस्ट होगा, तो उसकी बात है वहां। हमारा उदयाचल कौन सा है, मुंबई वाला? हाँ, मुंबई के लिए उदयाचल क्या है? उदयाचल किसको कहते हैं? उदय यानी पूर्व की तरफ जो कोई पर्वत होगा उसको उदयाचल कहेंगे। हमारा सूर्य कहाँ से आया? किसी बिल्डिंग के पीछे से। हाँ, यहाँ हमारे यहाँ वो ही ना बहुत बड़ी बिल्डिंग। पहले सूर्योदय भी अच्छा दिखता था। हाँ, देखो क्या ही भरक्षेत्र ना मानसो, देखो देखो नीचे से पांचवी लाइन, क्या ही भरक्षेत्र नो मानस एवा पांच मोटा मकान के जेनो एक एक पत्थरो नीलमणि नो भरेलो, नीलमणि एक एक कटकाना करोड़ो रुपया एवा पांच आखा मकानों ना मकानों एना ऊपर चढ़ी ने एक बार आम जोयूं अने सूर्य मां भगवान नी मूर्ति छे त्या नजर गई। तेथी आ अज्ञानी लोको सवार मां सूर्य ने पगे लागे छे ने, सूर्य तो जड़ छे तो भरत पगे लाग्या ने, पण भरत तो पगे लाग्या था शाश्वत प्रतिमा छे ने। क्या कहा उसने? सूर्य को देखकर वहां शाश्वत प्रतिमा को नमस्कार किया, तो सूर्य को देखकर नमस्कार करने की पद्धति पड़ी है ना, अकृत्रिम। हाँ, अकृत्रिम जनालय। आउ ज्ञान विक्लव वर्ततु थकु महामोहमल्ल जीवतो होवाथी, अरे मिथ्या मान्यता जीवती होवाथी, ए इंद्रिय ज्ञान ते ज्ञान छे, इंद्रिय सुख ते सुख छे, एवु मिथ्या। तो क्या कहा? इन्हें उतना ही ज्ञान और सुख मान लिया उसने, अन्य कुछ उसको पता ही नहीं है। महामोहमल्ल जीवे छे, इन्हें मिथ्या तो उसका कैसा महामोहमल्ल कहने से अति दृढ़तर मिथ्या तो जिसको कहा था पहले, महामोहमल्ल एने जीती लीधो छे, इन्हें उसने अपने वश कर लिया है इसको। आहा हा, महामोहमल्ल जीव तो हुआ थी परपर्ण तीनों एने परने परिणमवानो अभिप्राय करतु, एने मैं दूसरे को परिणमा सकता हूँ, ये उसका मिथ्या अभिप्राय है। हवे शू कहे छे ई आ इंद्रियों ने आवी राखूं, ए तो जे समय जेम रहेवानी हशे एम रहेशे, पण इंद्रियों ने आवी राखूं, कान ने आम राखूं, जीव ने आम राखूं, शरीर ने स्पर्शेंद्रिय ने आम राखूं, एम एने इंद्रियों को परिणमाने का भी उसमें भाव है, शरीर को ठीक ठाक रखने का। परद्रव्य ने परिणमवानो अभिप्राय करतु परिणमे छे, कौन? वो मोहमल्ल है ना अभी उसके कारण, अने इंद्रिय ज्ञान ना निमित्तो छे एने मेळववा माटे। क्या कहा? पहले पहले इंद्रियों को ठीक ठाक रखने के परिणाम, अब इंद्रिय ज्ञान में जो निमित्त है कौन सी है? वो प्रकाश है वगैरह, एने मेळववा माटे अभिप्राय करतूं એવો મિથ્યા અભિપ્રાય કરતો. હા હા, આખરી વાત છે, આવો ઉપદેશ કઈ જાતનો, આમાં અમારે કરવું શું, એ શું આવ્યું? બાપુ, કરવાનું એ છે કે અંદર અતિન્દ્રિય આત્મા ભગવાન છે, એમાં સુખ ભર્યું છે, એમાં આનંદ છે, એમાં ઈશ્વરતા છે, એમાં સ્વચ્છતા છે, એમાં સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષ થવાની, સ્વસંવેદન સ્વયં અપને હી અનુભવ મેં આવે, સ્વસંવેદન પ્રત્યક્ષ અપને કો જાને, તાકાત છે. આહા, ત્યાં નજર કર. ક્યા કરના હૈ? તો પહેલે મેં પહેલે ઉસકી શ્રદ્ધા કરકે ઉસકા નિર્ણય કરેંગે બુદ્ધિ દ્વારા, ઓર ઉસમે નજર કરના હૈ. આ છોડ, હવે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન ને છોડ, ભારે અકરું કામ. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન કો છોડ તો ઇન્દ્રિય કો અભી જૈસે વો સૂરદાસ ને ક્યા થા ના આંખે ફોડ લી થી, એસે ઇન્દ્રિયો કો સબ તોડ મરોડ કર દેંગે. તો કહેતે વો ઉસકો છોડના નહીં હૈ, ઉસકા લક્ષ્ય છોડ કે, ભારે અકરું કામ. સારા નામા લખે આમ મોતીના દાણા જેવા અક્ષરથી, 5,000 નો પગાર 10,000 નો પગાર આપે, અબજોપતિ હોય તો 10,000 નો પગાર આપે. અહીંયા એ કહે છે કે પરનું કરવા માટે ખેદ ખિન્ન છે, પરનું કરવા માટે ખેદ ખિન્ન છે. મિથ્યા દૃષ્ટિ મૂળ છે, પરનું કાંઈ કરી શકતો નથી. ક્યાં કહા? કુછ કર નહીં સકતા, પણ કરને ધરને મેં વો ખેદ ખિન્ન હો રહા હૈ. છોકરાને સાચવવાનો ભાવ એ મૂળ છે, એમ અહીં તો કહે છે. એને જો અભિપ્રાય હૈ ને, મેં ઉસકો સાચવ સકતા હું, એસા જો હૈ. અહીં કહે છે વિકલવ, અત્યંત વિકલવ, અત્યંત દુઃખી છે. ઇન્દ્રિય જ્ઞાનવાળા અત્યંત દુઃખી છે. આપ તો કહેંગે સારે છદમસ્ત ઇન્દ્રિય જ્ઞાન વાલે હૈ. હા, પરંતુ એ કોનસા ઇન્દ્રિય? અજ્ઞાની લ્યા, મહામિથ્યાત્વ વાલા જીવ લ્યા, હે ને? ઉસકો તો પતા હી નહીં અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ક્યા હોતા હૈ. જેને અતિન્દ્રિય આનંદનો નાથ પરમાત્મા નજરે લિખા હૈ, દેખો આગે કિસકી બાત હૈ અત્યંત દુઃખી? કે જેને અતિન્દ્રિય આનંદનો નાથ પરમાત્મા નજરે પડ્યો નથી, એને જીસકો દૃષ્ટિ મેં જીસને નહીં લ્યા હૈ, નજર કરતો નથી, ત્યાંથી ચ્યુત થઈ ગયો છે, એની મિથ્યા દૃષ્ટિ કી વાત યહાં હો રહી હૈ. અહીં તો આવી વાતો છે બાપા. હા હા, કહે છે કે પરને પરણવવાનો અભિપ્રાય કરતું, અર્થાત ઇન્દ્રિયોને આમ રાખું, એને આવા ખોરાક આપું, એને ભસ્મ આપું, એને સાલમ પાક આપું. ભસ્મ સમજ ને, વો સુવર્ણ ભસ્મ ઓર ક્યા ક્યા ભસ્મ ક્યા ક્યા મિલતે હૈ, વો ખાને સે વો ઇન્દ્રિય બરાબર કામ કરતી હૈ, એસા લગતા હૈ. સાલમ પાક ભી એક દવા હૈ, વો આયુર્વેદિક. હા, જો કુછ હોગા. અચ્છા અચ્છા, હા, કોઈ સ્વીટ હોય. હા અચ્છા, એમાં ધૂળમાં શું છે? જેસે બદામ ખાવ, આમ ખાવ, જો કુછ હે વૈસા, એ પાક આલે પાક, જેસે મરાઠી આલે પાક એને, વો તો ઉસકી બરફી બનાતે, વૈસા કુછ હોગા એ પાક. ચક્રવર્તીને જે 32 કવળનો ખોરાક હોય છે, અરે રાત કો બાત નહીં કરની તો આપ ફિર જોઈએ તો બનાવી આપો, બનાવીને મોકલું કે અમે લગા કુછ અતિન્દ્રિય કા કુછ નમૂના બના કે ભેજો કે પૂછ. દેખો, ચક્રવર્તીને જે 32 કવળનો ખોરાક હોય છે, એ એક એક કવળની અબજોની કિંમત એકલી ભસ્મ હોય છે, અને રોટલી કરે એમાં ભસ્મ નાખે અબજો રૂપિયાની, એવા 32 કવળ હોય, એ 32 ખાઈ શકે, એનો એક કવળ 96 કરોડ પાયદળ ન પચાવી શકે. ક્યાં કહા? એવું પચાને કેવી તાકાત હોગી ઉતની? 96 કરોડ પાયદળ ચક્રવર્તીનો 32 કવળ પચાવી ન શકે, એ 32 કવળ ખાય અને હોય અંદર સંકિતી, छता एना ऊपर लक्ष्य नथी एनो आश्रय नथी ए हेय छे हेय छे हाँ हाँ आप कहेंगे हम भी हेय करते करते खाएंगे ये अभिप्राय की बात है हाँ ब्रजेश्वर नारायण स्वामी होता हाँ तद्भव भी होते हैं देखो चक्रवर्ती या तो मोक्ष जाएंगे या तो सातवें नरक में जाएंगे तो वज्र ऋषभ नारायण सहनन वाले ही होंगे और चक्रवर्ती तो जन्म वो तो सम्यक में ही जो उन्होंने चक्रवर्ती पद कुछ बांधा होगा ना वो तो स्वर्ग की भी सम्यक दृष्टि है वो तो हर समय औदारिक शरीर के साथ वज्र ऋषभ नारायण सहनन ही बांध रहे फिर से सम्यक के साथ जो मनुष्य में जन्म ले रहे वो तो वज्र ऋषभ नारायण सहनन के साथ ही आएंगे ये नियम है क्योंकि देव समय दृष्टि मनुष्य गति बांधेंगे मनुष्य गत्यानुपूरी बांधेंगे औदारिक शरीर बांधेंगे औदारिक अंगोपांग बांधेंगे और पहला ही सहनन बांधेंगे समय दृष्टि है ना तो नीचे के सहनन कौन बांधेंगे तो पहला सहनन जो असंप्राप्त सुपाटिका वाला वो मिथ्या दृष्टि ही बांधेगा और बीच वाले चार तो दूसरा गुणस्थान वाले भी बांध सकते सारे ही समय दृष्टि वज्र ऋषभ नारायण सहनन ही बांधेंगे कौन देव या नार की समय दृष्टि क्यों मनुष्य समय दृष्टि क्यों नहीं बांधेगा बोलो वीरेश भाई वो देवगति बांध रहा है मनुष्य समय दृष्टि देवगति बांध रहा है तो देवगति के साथ वैकृत शरीर बांधेगा वैकृत शरीर में अंगों ये सहनन नहीं होता है अभी उसके लिए कुछ तो नियम जानने पड़ेंगे हाँ। ख्याल में आती है ना नहीं आई ये तो इसके लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए करना नियोग का नहीं सुबह का बहुत अभी जो विषय गंभीर चल रहा है कहो मगर है इंटरेस्टिंग बहुत न समझे ऐसा कुछ बात नहीं उसमें बहुत स्लोली जाते हैं ना हम ये देखो ये आ रहे हैं ना सारे लोग आपको भी आने में को नहीं आप दूसरा कुछ नहीं अच्छी बात है वो तो दूसरा स्वाध्याय में जाते हैं वो छोड़कर आओ ऐसा हम नहीं कह रहे चलो आगे बढ़ेंगे हो गया समय अभी 5 मिनट करेंगे अभी है टाइम है देखो 50 पेज पर आए भरत चक्रवर्ती माँ बात आवे छे एना खोराक माटे एवं होय छे के 360 अमलदार होय छे मोटा अमलदार हो ए अमलदार 12 महीना सुधी रसोई नी तैयारी करे एक दी रसोईया ने हुकम करवो रसोईया होय छे एने 360 अमलदार होय एमा एक एक अमलदार ने 360 दिवस मा एक दिवस नो रसोई नो हुकम करवो ए बधी तैयारी ए 360 दी करे छता आत्मज्ञानी जेने अंतर आत्माना आनंदनु भान छे ए एमां सुख मानतो नथी आहा हा समझानु काई हीरानी भस्म थाय छे ने हीरा करोड़ोना हीरा होय छे एनी भस्म करे भस्म करीने ऊना घीमा दाणा नाखे अने भस्म नाखे एटले गौना दाणा भस्म पी जाय गौना दाणा पी जाय पछी एनो करे लोट एने एनी करे रोटली पची जाए एने एने क्यांय पची जाए जेम तमारा रोटला पचे एम एने ई पची जाए अहीं तो दूधपाक आकरो आव्यो हो तो पछो मुश्किल पड़े अहीं तो कहे छे इंद्रियनु ज्ञान अने इंद्रियनु सुख ए परने परिणामवानो अभिप्राय करतू क्योंकि वो इसी को ज्ञान और सुख माना तो इंद्रियों को ठीक ठाक करने उसको पुष्ट करने में अभिप्राय बना रहता है उसका ये कहना चाहते आँख ने आम राखो ने कान ने आम राखो नाक ने आम राखो आहा हा एने जोवा माटे इंद्रियोना पदार्थ मारी सामे राखूं के जेथी जोवामां सामे मळे नजीक राखो सामे राखो एम करवा मागे पण एनाथी परपदार्थ परिणमशे नहीं अहीं आवू के न रहेवू ए तो पदार्थनी स्वतंत्र स्थिति छे क्या कहा उसने सोचा इसलिए सामने पदार्थ आकर खड़े हो गए ऐसी बात नहीं है पण आ अभिप्राय मिथ्यात्व एवो सेवो के हूँ एने परिणमावी दऊं छे परपरणतीनो એટલે પરણે પરણવાનો અભિપ્રાય કરતું. મિથ્યા શ્રદ્ધા યાની વો ઇન્દ્રિયો કો ભી પરણવાના માંગતે ઓર વો ઇન્દ્રિયો કે દ્વારા જિન પદાર્થો સે વો સુખ માના હૈ વો પદાર્થ ભી સામને રખના ચાહતા હૈ ઉસકો ભી પ્રાપ્ત કરકે નજદીક મે લાના ચાહતા હૈ કે ઉનકો મે ભોગું ઓર ઉસસે સુખ મિલ જાય મુજે. કરતું હુઆ છતાં પદે પદે એટલે ડગલે ડગલે છેતરા તું થકું એ ક્ષણે ક્ષણે છેતરાય છે. હા હા પદે પદે છેતરા તું એટલે એક એક જ્ઞાનમાં છેતરાઈ જાય છે અર્થાત કંઈકનું કંઈક જણાય જાય. અરે આ જણાનું નહીં, અરે મને આ થયું નહીં. એક વિષય લેતા બીજા વિષયની તૈયારી થઈ જાય અને ત્યાં બીજો વિષય ન હો તો ખેત ખેત થઈ જાય. હા 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 અબ યહી રુકેંગે. જાવાણી કે જ્ઞાન તે સૂજે લો કાલો સોવાણી મસ્તકન સદા દેત હો હુલો. નલિનભાઈ